कुछ दिया, नेत्र जह जलय।
ऐसा माना जाता है कि यदि माता पिता के या अपने संबंधियों के स्नेह के आंसू यदि बच्चे पर गिरते हैं तो वह निरोग रहता है। वो कोई बनावटी नहीं गिराया जाता है, स्वाभाविक रूप से प्रेम में आंसू गिरे, मां का शोक का आंसू नहीं, प्रेम का आंसू, आनंद का आंसू, तो उसे बच्चे निरोग रहते हैं, अच्छे होते हैं, सफल होते हैं। यह शिशु का अर्थ लगता था माताएं भगवान कृष्ण का अभिषेक कर रही, रो रहे थे और कृष्ण उन आंसुओं को अपने शरीर पर ग्रहण करके वे अपने को धन्य मान रहे थे। यह है अपराकृत जगत का भगवान के साथ संबंध। बारंबार विचार करना चाहिए, क्या बात है, 100 वर्ष के बाद भी अस्तन में दूध भरा हुआ है। केवल भरा ही नहीं हुआ है, वो चुचुआ रहा है, बाहर आ रहा है, उससे मां की कंचुकी भींग रही है। और श्री कृष्ण भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे लगता है कि वे बच्चे हैं और अभी भी मां के अस्तनों का है उनको सहारा है, आश्रय है, वो गोद में चिपके हुए। हाँ, तो यहां पर संकेत नहीं है, हो सकता है पिए होंगे, आंसुओं से तो भींग ही गए और गोदी में बैठे ही हैं। स्त्री का जो जीवन है वास्तव में कई फेज से गुजरता है। किसी भी स्त्री को यह कामना जरूर करनी चाहिए कि हमें पुत्र हो। आजकल की स्त्रियां तो केवल प्रेयसी बना रहना चाहती हैं, पुत्र नहीं चाहती, मां नहीं बनना चाहती। लेकिन स्त्री जीवन की यह शोभा है, जैसे वह किसी की प्रेयसी है तो किसी की मां बने यह उतनी ही शोभा की बात है। पहले काल में हमारे वैदिक संस्कृति में देखा जाता है कि प्रत्येक लड़की मां बनने की अभिलाषा रखती थी, मैं मां बनूं। और वास्तव में ये सारी सृष्टि तो मां से है, भगवान श्री कृष्ण की मां है, चैतन्य महाप्रभु की मां है, भगवान श्री राम की मां है, सारे वैष्णवों की, श्रेष्ठ लोगों की कोई ना कोई मां है। मां बनने की इच्छा होनी चाहिए। कितना संबंध है, सब संबंध परफेक्ट है, पुत्र के साथ जो संबंध है वो अपने जगह पर परफेक्ट है, प्रियतम के साथ जो संबंध है पति के साथ वो अपने स्थान पर परफेक्ट है। केवल ऐसा नहीं मान लेना चाहिए केवल पति से ही संबंध है और किसी से है ही नहीं। तो इन माताओं का वसुदेव जी से संबंध है, वे पति हैं और श्री कृष्ण पुत्र है। कितना प्रगाढ़ संबंध है कि 100 वर्ष के बाद भी स्तन में दूध आना, चुचुआना, इस एक वर्णन द्वारा सारे वात्सल्य भावों का वर्णन कर दिया गया। वे बार बार रो रहे थे, अभिषेक कर रहे थे और कृष्ण को खिलाने के लिए तुरंत प्रबंध करने लगे, ये जान करके कृष्ण को यह प्रिय है, यह प्रिय है, यह प्रिय है, यह प्रिय है। मां को चिंता लगी रहती है कि बेटा को खिलाना है। हमारे यहां एक कहावत कहते हैं लोग, सुनने में भद्दा है लेकिन मां के भाव को व्यक्त करने में बड़ा समर्थ है। भोजपुरी भाषा में कहते हैं कि माई जो है पेट, मेहर जो है टेट। टेट का अर्थ वहां भोजपुरी में होता है पाकिट। जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है परदेश से तो अपनी पत्नी उसका टेट देखती है, कितना पैसा लाया है, सब बिल देना है, खर्च करना है, ये करना है, कुछ कमा कर आया कि नहीं। और माँ केवल पेट देखती है कि बेटा खाया है कि नहीं खाया है, कैसे रहा, और देह देखती है कि दुबला हो गया है, पतला हो गया है, वो पैसा नहीं देखती है। यह बात बहुत ही विचारणीय है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से गोपियों ने प्रश्न कर दिया कि संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले और नहीं करने वाले दोनों से प्रेम नहीं करते हैं, आप इसमें से कौन हैं? भगवान की हार भगवान के मुख से ही स्वीकार कराना चाहते थे। भगवान ने कहा कि देखो सखियों, जो लोग प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वहां तो प्रेम है नहीं, वो तो केवल झूठा बिजनेस है। अगर हम किसी को कुछ दें और वो हमको दे, हम किसी से प्रेम करें और तब प्रेम करें, तो यहां तो प्रेम नहीं है। मिथो भजंत ये सख्य स्वार्थई कांतोद्यमाहिते न तत्र सहृदम धर्मम स्वार्थार्थम तद्धिनान्यत। वहां न धर्म है न सौहार्द है। प्रेम करने पर जब प्रेम किया तो क्या है? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं, भगवान कहते हैं। तो उसमें उदाहरण देते हैं करुणा पितरो यथा, जैसे करुणाशील पुरुष अथवा करुणाशील माता और पिता। लड़के माता पिता से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं। वहां पर निश्चित धर्म है और सत्य है। तो भगवान माता पिता का जो प्रेम है उसको प्रेम स्वीकार किए, लेकिन स्त्री पुरुष का जो प्रेम है उसको उन्होंने उदाहरण में नहीं दिया। साफ बोल रहे हैं जमुना के कुलीन पुत्र, आज इस संसार में प्रेम या लव शब्द जो बोला जाता है लगता है कि बस केवल स्त्री पुरुष में ही है, लेकिन भगवान ने इसको तो इसका नाम लिया ही नहीं, इसको तो उन्होंने कह दिया ये तो स्वार्थ है, ये इसमें प्रेम नहीं है। प्रेम वास्तव में माता पिता के हृदय में होता है। और कुछ उन्होंने बताया कि कुछ लोग प्रेम नहीं करने वाले या करने वाले दोनों से नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं होता है। आत्मा रामा यात कामा अकृतज्ञ गुरुद्रोह ऐसे कहा। कुछ लोग आत्मा में रमण करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हमसे कौन घृणा कर रहा है कौन प्रेम कर रहा है, उनकी बाह्य वृत्ति होती ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये जानते हैं कि हमसे यह व्यक्ति प्रेम कर रहा है, लेकिन वो आप्त काम होते हैं, किसी के प्रेम की उनको जरूरत ही नहीं है, करो या मत करो। और कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, जड़ होते हैं, कि उनको पता ही नहीं चलता है कि वो किसी ने उनका इतना उपकार किया है, ये किया है। अकृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ उपकार मानते नहीं। और कुछ लोग गुरुद्रोह, और कुछ लोग माता पिता से द्रोह करने वाले होते हैं। कितना भी माता पिता प्रेम करे सेवा करे, लेकिन वो उनसे द्वेष करते हैं। तो गोपियों ने कहा आप किस में हैं? तो भगवान कहते हैं ना हम तो सख्य भजतो पिजन तुम भजन निशा मनोवृत बोलते, मैं इन चारों में से कोई नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मैं प्रेमियों के साथ उतना खुल करके व्यवहार नहीं करता हूं, नहीं तो उनका मन बढ़ जाएगा, वो मेरे कंधे पर चढ़ना चाहेंगे इसीलिए मैं थोड़ा सा दब करके व्यवहार करता हूं, मिल मिल करके छिप जाता हूं। वैसे आप लोगों के प्रेमोद्गार को सुनने के लिए मैं छिपा था कुंज में, सब सुन रहा था कि हमारे विरह में गोपी गीत में आप लोग क्या क्या गा रही हैं, क्या क्या कह रही हैं। लेकिन साथ में जब हो गया था तो कोई कंधे पर चढ़ना चाहता है, कोई मान कर गया, कोई कुछ कर गया। इसीलिए मैं, अगर कोई हमसे 100% प्रेम करता है, मैं तो प्रेम तो करता हूं लेकिन 10-20% कम दिखावा करता हूं जिससे कि हमारे लिए वो तड़पता रहे, बेचैन रहे। तो भगवान वास्तव में सबसे विलक्षण प्रेमी है, प्रेम का बदला चुकाते हैं। तो इस अवसर पर भगवान ने माता पिता के प्रेम को शुद्ध प्रेम कहा। तो यहां पर वे अपनी माताओं से मिल रहे हैं और मिल करके उन्होंने भोजन किया, स्वागत लिया, खाए पिए, और इसके बाद प्रणाम करके कहे कि अब जा रहे हैं अपने घर में। अथा विशत स्वभवनम सर्व काम मनुत्तमम प्रासाद जत्र पत्नी नाम सहस्राणी च षोडश। अथ स्वभवनम आविशत, इसके बाद भगवान अपने घर में गए। अपने घर, तो अपने घर का मतलब है न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृह उच्यते। गृह को गृह नहीं कहते हैं, गृहिणी को गृह कहते हैं। मतलब अपने पत्नियों के घर में भगवान गए। अब अंततः तो वहीं रहेंगे। अथ आविशत स्वभवनम सर्व कामम, जिन घरों में सब प्रकार की कामनाएं भरी हुई थी, अर्थात सब प्रकार की भोगों की सामग्रियां प्रचुर मात्रा में थी, सब दिव्य जगत की चीजें थी। यहां के किसी कारखाना में बना हुआ नहीं,
कोई फर्नीचर या कुछ भी, सब कुछ दिव्य जगत की चीज थी। भगवान के घरों में सब कुछ भरा पड़ा अनुत्तम, जिससे उत्तम और दूसरा कोई नहीं है, सबसे श्रेष्ठ भवन भगवान का सारे जगत में, जहां पर 16,000 स्त्रियों के दिव्य बड़े बड़े भवन थे। प्रसादा जत्र पत्नी नाम सहस्राणी, षोडश सहस्राणी, और च का अर्थ है अष्टोत्तर शत अधिक, 108 अधिक, च शब्द से, और षोडश सहस्राणी 16,108 जहां भवन, एक एक नगर जैसा अलग अलग एक एक पत्नी के लिए था, उसमें प्रवेश किए। ये तो पहले ही बात कही जा चुकी है कि विभू परमेश्वर भगवान तो 16,108 भवनों में 16,108 रूप से प्रवेश किए। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सवा उतस्थुरारत सहसासनाशयात साकं व्रतैर्व्रीडित लोचनाननः। तो पत्नियां अलग अलग महलों में जब अपने पति को श्री कृष्ण को देखी, कैसे श्री कृष्ण को, जो प्रोष्य गृहान उपागतम, प्रोष्य का अर्थ है कि विदेश में रहकर, परदेश में रहकर बहुत काल के बाद जो आए थे, उनको देखते ही संजात मनो महोत्सवा, मन में महान उत्सव सुख हुआ पत्नियों को, देख करके उतस्थुरारा दूर से ही देखी कृष्ण को, और देख करके आसनास्यात उतस्थु आसन से खड़ी हो गई और आशय से भी खड़ी हो गई। आसन से तो देह खड़ा हुआ, बैठी थी बहुत विषाद में भगवान की पत्नियां थी, भगवान के विरह में, तो उनको देखते ही तत्काल खड़ी हो गई आसन से और आशय से भी खड़ी हो गई। आशय का अर्थ है अंतःकरण से, मतलब इतनी तत्परता थी कि लगता था कि जैसे आत्मा अंतःकरण छोड़ करके भी भगवान से मिलना चाहता है। भगवान से मिलने में अंतःकरण का व्यवधान भी वे सह नहीं सके। आसन से तो उठी ही, आशय से उठ गई, साकम व्रतैर व्रीडित लोचना नना, आसन को छोड़ दिया और व्रतों को भी छोड़ दिया, अथवा व्रतों के साथ ही वे उठ करके खड़ी हो गई। व्रत का क्या मतलब है? जिस स्त्री का पति परदेश गया हो तो उस स्त्री के लिए शास्त्र कुछ नियम बताता है, उसको यहां व्रत कहा गया है। यदि पति साथ में न हो तो क्या क्या व्रत करना चाहिए, कई काम है जो नहीं करना चाहिए। जागवल्क जी अपनी स्मृति में कहते हैं, क्रीड़ाम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम प्रगृह जानम त्यजित प्रोषित भर्तृका। प्रोषित भर्तृका, जिस स्त्री का पति परदेश में हो तो उसे चाहिए कि वह क्रीड़ां वर्जित, क्रीड़ा ना करे, खेलकूद में भाग ना ले, स्पोर्ट्स में भाग ना ले, या किसी क्रीड़ा में भाग ना ले। पति साथ में हो तो पति के साथ भाग ले सकते हैं, लेकिन पति के परदेश होने पर नहीं। शरीर संस्कारम, शरीर का वो बहुत संस्कार ना करे, बहुत अलंकार धारण ना करे, ये शास्त्र वर्णन करता है। क्योंकि अगर वो अपने को सजाती है, संस्कार करती है, तो बहुत से दूसरे पुरुषों का मन उस पर आकृष्ट होगा, और उसमें पति नहीं है तो यह ठीक नहीं है। पति के सामने ही उसे श्रृंगार करना चाहिए, और वास्तव में जो पत्नी श्रृंगार करती है तो उसका सिद्धांत यह है कि पति के नेत्रों को सुख देने के लिए, उसको अच्छा लगने के लिए उसे श्रृंगार धारण करना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। दुनिया देखकर पसंद करके क्या करेगा, ये तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए शरीर संस्कार मना है। शरीर संस्कार से तात्पर्य यह नहीं है कि स्नान भी ना करे, स्नान करे लेकिन बहुत बहुत अलंकार आदि धारण ना करे। पति न हो तो
न करे। पति के आने पर जितने श्रृंगार धारण करना है करे। ये सिद्धांत है कि पत्नी पति के लिए श्रृंगार धारण करती है, न कि समाज के लिए। समाज के लिए श्रृंगार तो वेश्या धारण करेगी, और पति के लिए श्रृंगार पतिव्रता पत्नी करती है। तो क्रीडम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम, कोई सोशल फेस्टिवल हो उसमें नहीं भाग लेना चाहिए। समाजोत्सव कहते हैं उसको, उस सामाजिक उत्सव चल रहा है तो उसमें पति के बिना भाग नहीं लेना चाहिए। और हास्यम, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए किसी से। और पर गृह यानम, दूसरे के घर जाना, ये भी नहीं करना चाहिए। तो ये जितने गिनाए गए तेजत प्रोषित भर्तृका, उसे चाहिए कि वह इनका त्याग करे। पति घर में ना हो तो टीवी भी नहीं देखना चाहिए। पति के साथ बैठकर कुछ देख सकती है, लेकिन पति ना हो तो नहीं। तो हम लोग तो कई बार घरों में घूमते हैं, देखते हैं पति नहीं है, लेकिन पत्नी ऑन करके टीवी दिन भर देख रहे हैं। मैंने देखा कनाडा में एक बार ऐसे, ये ठीक नहीं है। दूसरा भागवत ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत है, उसको पढ़े सुने करें, लेकिन टीवी से भी देखें ठीक नहीं है। तो भगवान की पत्नियां तो पूर्ण पतिव्रता स्त्री हैं, तो व्रतों के साथ ही वे उठकर खड़ी हुई, व्रत छोड़ दिया, छोड़ व्रतों के साथ ही वे खड़ी हुई, अपना श्रृंगार नहीं किए थे। भगवान के सामने वे आई तो व्रतों के साथ आई, अथवा आज से व्रत छोड़ करके आई, छोड़ देंगी। अब प्रियतम है तो प्रियतम के साथ वे शरीर का संस्कार करेंगे, सजाएंगे अपने को, चाहे उनके साथ कोई भी फेस्टिवल में खेलकूद में जो भी भाग लेना है ले सकती हैं, लेकिन पति के बिना नहीं, नियम। तो जैसे स्त्रियों के लिए नियम है, वैसे पुरुषों के लिए भी नियम है। ऐसा नहीं समझने चाहिए कि सारा अंकुश केवल स्त्रियों पर है और पुरुष बस फ्री हैं जो भी जहां घूमे। भगवान भी इतने दूर से घूम करके आए, लेकिन देखे कहीं भी केवल मुस्कुरा कर देखे भी हैं, देखे हैं हस्तिनापुर की स्त्रियों। ऐसा नहीं कि किसी से मिलें, किसी से कुछ करें, उसे भी बहुत नियम में रहना चाहिए पति को। तमात्मजय दृष्टि भिरंतरात्मना गंभीर भावा परिरे भिरे पतिम निरुद्धमप्याश्रवदम्बु नेत्रयः विलज्जतीनां भृगुवर्ज विक्लवा। तो श्री कृष्ण का वे आलिंगन कर रही हैं, जैसे माताओं के आलिंगन का वर्णन आपने सुना, तो भगवान की पत्नियां भगवान का आलिंगन कर रही हैं गंभीर भाव। पत्नियों का अभिप्राय बहुत गंभीर है। सूत गोस्वामी कहते हैं हम लोग क्या समझेंगे, भगवान की जो प्रेयसियां हैं, भगवान के प्रति उनका कितना गंभीर भाव है, क्या हम समझेंगे। तो तम आत्मजय है, तमात्मजय बुद्धिवीर दृष्टिवीर अंतरात्मना। श्री कृष्ण का सबसे पहले आलिंगन किया पत्नियों ने अंतरात्मना, अंतरात्मा से, बुद्धि से। जब ही वे कृष्ण के आने का संवाद सुनी तो मन ही मन आलिंगन करने लगी थी उनका। जो पत्नी का सहज अधिकार है तो वो मन में आलिंगन करने लगी, और कुछ दूर जब आए तो दृष्टि भी, दृष्टि से आलिंगन करने लगी, और बिल्कुल निकट जब प्रियतम आए तो आत्मजय पुत्र के द्वारा आलिंगन की। गोद में पुत्र को लेकर आई और श्री कृष्ण को दी, तो वो बच्चा श्री कृष्ण के गोद में झूल गया भगवान का कंठ पकड़ करके। तो वो स्त्री मान रही थी जैसे मैं ही आलिंगन कर रही हूं। बच्चा जो है वो स्त्री और पुरुष को जोड़ने के लिए वास्तव में सीमेंट की तरह है। अगर किसी को पुत्र पुत्री न हो तो वो संबंध है टूटने का डर रहता है, संतान जो है वही पति पत्नी को जोड़कर दीर्घ काल तक रखता है। संतान दोनों के भावों का प्रतिरूप होता है, दोनों के हृदय का अंतःकरण का व्यक्त रूप होता है। तो यहां पर यह भाव है कि आत्मजयी परिरे भी रहे, अपने पुत्रों के द्वारा भगवान का आलिंगन के, मतलब कोई पत्नी यदि अपने बच्चे को गोद में लेकर आती है और बहुत दिन के बाद पति मिलते हैं, तो बच्चे को गोद में लेकर के अगर पति को देती है तो यह एक बहुत बड़े सुंदर भाव का आदान प्रदान होता है। वह संतान दोनों को जोड़े रहता है, और यदि पति उस बच्चे को गोद में लेता है अपने बच्चे को, तो इसे माना जाता है कि वह पत्नी का सत्कार कर रहा है, या पत्नी बच्चे को खिला रही है तो पति का ही आदर कर रही है। वास्तव में पति ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, तो पुत्र की सेवा शुश्रूषा करना है तो धर्म है ही। तो पति पत्नी के बीच संतान को बीच में रख करके जो आदान प्रदान होता है, आलिंगन होता है, तो उससे उनका प्रेम व्यक्त होता है और बहुत काल तक स्थायी रहता है। भगवान द्वारका में गृहस्थ हैं, इसलिए जो गृहस्थोचित आचार है उसका पालन किया जा रहा है। पत्नियां इस तरह से भगवान से मिल रहे हैं, आत्मजय ही दृष्टि भी ही अंतरात्मना आलिंगन कर रहे थे। और यह प्रश्न होगा कि ये अंतरात्मा से, दृष्टि से और पुत्रों द्वारा आलिंगन कर रही हैं, क्यों नहीं डायरेक्ट हाथ से ही पकड़कर आलिंगन की? विलज्जति ना भृगुवर्ज बैकलवात, आगे श्लोक में कह रहे गंभीर भाव, लज्जा हो रही थी। अपने ही पति हैं तो क्या, लेकिन लज्जा जो है स्त्री का भूषण है। अभी आए हैं तो ऐसा नहीं कि उनको अखबार में भर लें, आपने देखा और दूसरा व्यक्ति श्री कृष्ण का आलिंगन कर लिया, माताएं आलिंगन कर ली, लेकिन जिनका सबसे ज्यादा अधिकार है वो डायरेक्ट आलिंगन नहीं थे, क्योंकि विलज्जति ना लज्जा में थे। यही है स्त्री का भूषण। कहीं भी कोई व्यक्ति पूछता है किसी स्त्री से कि पति के विषय में कि तुम्हारे क्या लगते हैं, क्या लगेंगे, आजकल की तो स्त्रियां साफ कह देंगी वो मिस्टर हैं हमारे, और वो कह देगा हमारे मिसेज। ये क्लियर कहते रहते हैं, लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति में डायरेक्ट परिचय देने का नियम नहीं है। परिचय ऐसा देना चाहिए कि जैसे मान लीजिए किसी की पत्नी है और कोई पूछे कि ये कौन है, तो पति यही कहेगा, अपने पुत्र का नाम रख करके कहेगा उसकी माँ है, अथवा अपने ससुर का नाम रख कर कहेगा उनकी पुत्री है। तो अपने से ज्यादा दूसरों के संबंध को दृढ़ करता है वो वचन द्वारा, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। अपना संबंध नहीं बताया जाता है, ये कामना रहती है कि पुत्र में और माँ में प्रेम बढ़ना चाहिए, संबंध रहना चाहिए। जैसे रामायण में एक प्रसंग है, भगवान श्री राम वन में जा रहे हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, गांव में भगवान नहीं प्रवेश करते थे, वन के रास्ते में जो गांव रहते थे तो गांव से बाहर भगवान रुकते थे कभी कभी। एक बरगद के नीचे रुके, लोगों ने रोका, कोई पानी ला रहा था पीने के लिए, कोई दे रहा था, भगवान बैठे वहां, पुरुष लोग बैठे थे और सीता जी के पास स्त्रियां बैठी, गांव की स्त्रियां घेर ली, इतनी सुंदर तेजस्वी स्त्री है। तो स्वाभाविक पूछताछ करती हैं किस गांव की है, कहाँ की है, बनारस से आई है कि इलाहाबाद की है, कहाँ की है, उधर से आ रहे थे, जो भी हो, उस समय प्रयागराज नाम था उसका, कहाँ की है। तो स्त्रियां सब देखकर बात कर रहे हैं कि तुम तो देखने में लगती हो कि राजकुमारी हो, ऐसी हो, वन में क्यों जा रही हो, क्या कुछ सीता जी बोल नहीं रही थी। अंत में स्त्रियां कहती हैं कि देखो सखी, हम एक बात आपसे पूछना चाहती हैं, ये जो सांवले हैं ये तुम्हारे क्या लगते हैं? इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम सीता जी से बिल्कुल सट कर नहीं चलते थे, और बैठे भी थे तो थोड़ा दूर बैठे थे, अगर निकट बैठे होते तो वो समझ गई होती कि इसके पति, जैसे आजकल कोई भी आदमी समझ जाएगा किसी। पति है तो इतना आसक्त है कि वो हमेशा सट कर बैठना चाहता है ना? ये ठीक कार्य नहीं है। तो भगवान राम थोड़ा दूर पर बैठे तो बैठी थी तो कहते हैं कि कोटि मनोज लजाव निहारे सुमुख कहूं को आही तुम्हारे। ये जो सामने पुरुष हैं जो कोटि कोटि कामदेव को लज्जित कर रहे हैं, हे सखी हे सुंदर मुख वाली, ये तुम्हारे कौन हैं? भगवान के विषय में पूछ रही हैं, ये तुम्हारे कौन है? कुछ कुछ गांव की स्त्रियों के आशा भास हो रहा था कि ये इसके पति हैं, लेकिन वो पूछ रही है सीता जी से। लेकिन सीता जी गांव की स्त्रियों के वचन को सुन करके थोड़ा थोड़ा आंचल को और ढांक ली। लक्ष्मण जी का परिचय पहले बता रही हैं। भगवान के विषय में उन लोगों ने पूछा था, लेकिन वो कह रही हैं कि सुभग सहज सुभाय सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। सीता जी कह रहे हैं कि ये जिनका बहुत सुंदर स्वभाव है और जो बहुत गोरे हैं, अच्छे हैं, ये हमारे छोटे देवर। कितनी सुंदर बात बोल रही है, कह रहे छोटे देवर हैं, मतलब हमारे बड़े देवर भरत जी हैं वो अयोध्या में हैं, ये हमारे छोटे देवर। नाम लखन लघु देवर मोरे, इनका नाम लक्ष्मण है और मेरे छोटे देवर। कितना सुंदर परिचय दे रही है, देवर कह करके वो ये कह रहे हैं कि हमारे पति के भाई हैं। यह कितना भ्रातृत्व की भावना को दृढ़ कर रही है, यह कहना बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसा नहीं कह दी कि मैं उनकी भाभी हूं, ऐसा नहीं कह दी। देवर कह रही है तो देवर कहने से पति के साथ संबंध झलक रहा, हमारे पति के छोटे भाई। नाम लखन लघु देवर मोरे, और बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी पियतन चित भौं करी बाकी। और जब अपने पति को बताना हुआ तो बहुरी बदन विधु अपने बदन चंद्र को आंचल से ढक करके और केवल आंखों से तिरछा देख दी, बोली नहीं, तो समझ गए कि ये पति। ऐसा नहीं कहेगा वो हमारे मिस्टर हैं, सांवले हमारे ये हैं वो, अरे सभी जान जाते हैं कि क्या है। इतना खोल कर कहने की क्या जरूरत। और बोलने में कही कि हमारे छोटे देवर हैं, तो भरत जी के प्रति भी भाव था कि हमारे बड़े देवर। ऐसा नहीं बकने लगेगा, अरे वो हमारी एक सौत मामा है, बहुत खराब है, हमने वनवास दे दिया, ये दे दिया, ऐसा कर दिया। सीता जी सब कुछ नहीं बोली, बस मुंह खुला तो बस खुल गया। बहुत शालीनता है शास्त्रों में और विशेष करके रामचरितमानस में, इतना सुंदर व्यवहार कुशलता दिखाई गई है उसमें। तो इस प्रकार से भगवान की पत्नियां यद्यपि भगवान से मिली हैं कई महीने के बाद, लेकिन फिर भी भगवान का डायरेक्ट आलिंगन नहीं कर रहे थे। उनमें भाव था लेकिन भावों को छिपा रहे थे और लज्जा आ रही थी, और चाहती थी कि आंसू जो उमड़ रहे थे आनंद के, उनको चाहती थी कि इनके सामने आंसू न दिखावे। कि कोई भी स्त्री दिखाना नहीं चाहती है कि मैं रो रही हूं, और अपने भावों को छिपाना चाहती है, तो वे छिपाना चाहे। निरुद्धम अपि आसर्वदम्ब नेत्रयो, रोकने के बाद भी उनके आंखों से आंसू ढलक ही गए, आनंद के आंसू। हे भृगुवंश, हे भृगुवंश शिरोमणि सौनक जी, ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि वे इस तरह से आंसुओं को रोक रहे थे, आनंद के आंसुओं को, लेकिन फिर भी आंसू बह ही गए। वो विकल थी भगवान की सेवा के लिए, बहुत दिन के बाद मिलन हुआ था। तो इस प्रकार की बात कह करके, तब जब कहते हैं तो मानो सौनक जी कहें कि अरे जब कृष्ण उनके है ही, रोज साथ में रहना ही है, वो भी एकांत में रहना है, तो इतनी क्या उत्कंठा हो रही है। तो उसी का उत्तर देते हैं वे कि जदप्यसौ पार्श्व गतो रहो गत तत्तापि तस्याङ्घ्रिजुगम् नवम् नवम् पदे पदे काभिरमेत तत्पदात् चलापि जच्छ्रीर्न जहाति कर्हि चेत्।
यद्यपि असौ ये कथा कहते समय सुत गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखे हुए हैं तो कहते हैं असौ, असौ का अर्थ होता है ये। यद्यपि ये श्री कृष्ण इन स्त्रियों के बिल्कुल पास ही रहते हैं और पास ही नहीं रहोगत बिल्कुल एकांत में रूम में रहते हैं, फिर भी भगवान का चरण कमल उन्हें नया नया ही लगता है पदे पदे, परंतु प्रतिदिन उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि श्री कृष्ण से हम प्रथम बार मिल रही हैं, इनको प्रथम बार देख रही हैं, ऐसा अनुभव होता है। कौन स्त्री है जो श्री कृष्ण से अपने मन को हटा ले और उब जाए? अरे स्वयं चंचल स्वभाव स्त्री भी कभी भी उनके चरण को नहीं छोड़ पाती, जो श्री न जहाते करे। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, लेकिन ऐसी चंचल स्वभाव वाली लक्ष्मी भी भगवान को क्षण भर के लिए नहीं छोड़ पाती है। भगवान इतने मनोहर हैं, इतने सुखद हैं कि कोई भी स्त्री उनको कभी नहीं छोड़ सकती है। अतः यद्यपि द्वारका में अपने पत्नियों के पास ही भगवान रहते हैं, रहोगत एकांत में रहते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि हम आज ही प्रियतम से मिल रहे हैं, आज ही इनको देख रही हैं। इतना उत्कृष्ट सौंदर्य है श्री कृष्ण में, इतनी रसिकता है, महानता है। आज तक लक्ष्मी तो चरणों में टिकी है, वक्षस्थल पर टिकी, वो कहां उबी भगवान से। भगवान में इतना रस है कि प्रतिक्षण नया नया लगता है, नया नया लगता है, इसीलिए उनकी उत्कंठा बनी रहती है। तो इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ रहने लगे सुख से। अब भगवान के की गई लीला को संक्षेप में सुखदेव सुत गोस्वामी कहते हैं। एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्मनाम औक्षौहिणी भी परिवृत तेजसाम विधाय वैरम स्वसनो जथानलम मिथो बधेनो परतो निरायुध। कुरुक्षेत्र के युद्ध की याद करते हैं और भी लीलाओं के। इस प्रकार से एवं निर्पाणम क्षितिभार जन्मना, जो राजा लोग पृथ्वी के भार के रूप में जन्म लिए थे, पाप कर रहे थे, और औक्षौहिणी सेनाओं के द्वारा जिनका तेज बहुत बढ़ गया था, बल बढ़ गया था, ऐसे राजाओं का वध भगवान ने परस्पर में बैर करा करके कर दिया, सबका नाश कर दिया। जैसे वायु श्वसन, श्वसन का अर्थ है वायु, जैसे वायु बांसों को इधर उधर झकझोरता है और उनमें आग लग जाती है और आग बांसों को जला देती है, वैसे ही भगवान ने परस्पर में बैर उत्पन्न करके और उनको आपस में पृथ्वी के भार भूत राजाओं को नष्ट कर दिया। निरायुध, स्वयं हथियार भी नहीं उठाए। कुरुक्षेत्र में भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं आयुध नहीं उठाऊंगा। उदाहरण कितना अच्छा है, हवा बांसों के झुरमुट में आग लगाती है तो कोई आयुध लेकर के नहीं, हवा जोर से चलती है, चौराई हवा और बांसों में रगड़ होती है, आग उत्पन्न होती है, बांस जल जाते हैं। वैसे ही परस्पर वैर उत्पन्न हुआ वंश में, भगवान ने परस्पर द्वारा ही सबका कुरुक्षेत्र में नाश कर दिया, पृथ्वी का भार दूर कर दिया।
सा नरलोकेस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्री रत्न कुष्ठस्थो भगवान प्रकृतो जथा।
तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हैं, लेकिन एक लीला अद्भुत है और आज तक लोग विचार करते रहते हैं कि भगवान इतनी स्त्रियों के साथ क्यों रहते हैं। अरे एक दो के साथ चाहे दस के साथ, भाई 16-16 हजार स्त्री, ये बहुत दिमाग को झकझोरने वाली लीला है भगवान की। स ऐसा वही भगवान स्त्री रत्नों के सबसे श्रेष्ठ सुंदरियों के साथ रहते थे, रमण करते थे, जैसे ऐसा लगता था कि कोई प्राकृत जथा, कोई प्रकृति के बस में रहने वाला व्यक्ति जो स्त्री से सुख मानता हो, स्त्री का संग्रह करता हो। ऐसा लगता था कि भगवान यहां से स्त्री ला रहे हैं तो उधर से 16,000 ला रहे हैं, उधर से एक ला रहे हैं। ये तो प्राकृत व्यक्ति करता है जिसके मन में काम विकार है, अभाव की अनुभूति है, वो सोचता है स्त्री लाऊं तो कुछ घर का काम करेगी, चाहे सुख मिलेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन भगवान इस तरह की लीला किए, सबसे श्रेष्ठ सुंदरियों के साथ रमण किए, स ऐसा नरलोकस्मिन अवतीर्ण स्वमाया, अपनी योग माया से अवतीर्ण हुए और श्रेष्ठ सुंदरियों के साथ रमण किए, जैसे लगता था कि कोई प्राकृत व्यक्ति, लेकिन प्राकृत नहीं। अगर यहाँ रेमे शब्द कह दिया गया तो इस पर प्रश्न होता है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में इतना सुख मान रहा है वो भगवान कैसे कह रहे हैं उसको, तो कैसे भगवान कह रहे हैं। तब सूत जी कहते हैं, उद्दाम भाव पिशुमलामल बल गुहास ब्रीड़ावलोक निहत मदनो पिजासाम समूह्य चाप मजहात प्रमदो तमास्ता जस्येन्द्रियम विमथितुम कुहके न सेतु। इतनी सुंदर स्त्रियां थी, इतनी सुंदर स्त्रियां थी कि उनके आगे कामदेव भी लज्जित हो गया था और अपना धनुष फेंक दिया था। इसका अर्थ है कि काम को जीतने वाली वे स्त्रियां थी, काम विजयिनी थी स्त्रियां, इतनी सुंदर थी। अथवा अमदन शब्द का अर्थ होगा भगवान शिव। भगवान शिव जो मोहिनी के स्वरूप पर मोहित हो गए थे और कामदेव को जिन्होंने जला दिया था, उनको बहुत गर्व था भगवान शिव को, एक प्रकार से कहा जा सकता है कामदेव को हमने जला दिया। लेकिन ये स्त्रियां इतनी सुंदर थी, स्त्रियां इतनी सुंदर थी कि भगवान शिव भी अपना चाप पिनाक फेंक दिए थे, इतनी सुंदर थी। तो अब ये मिलान कीजिए, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया था और वही कामदेव उन स्त्रियों के सौंदर्य को देख करके अपना धनुष फेंक दिया था, मतलब हार मान गया था। और इतनी सुंदर स्त्रियां, इतनी सुंदर स्त्रियां भी अपने सुंदर हाव भाव से, श्लोक पढ़ने कैसे चालू हुए हैं, उद्दाम भाव कृष्ण कृष्णा मल बल गुहास, जिनके बहुत उद्दाम भाव थे और भाव के सूचक हंसी और लज्जा से युक्त मुख मुस्कुरा करके या देख करके भी हाव भाव से विविध प्रकार से भी भगवान के इंद्रिय को मन को मथने में समर्थ नहीं हो सके। इतनी स्त्रियां थी, एक सुंदरी ही काफी थी किसी के इंद्रिय को मथने में, मन को विचलित करने में। लेकिन 16,000 स्त्रियां मिल करके भी अनेक हाव भाव से भी भगवान के मन को वश में नहीं कर पाई, मन में विकार नहीं हुआ भगवान के। जस इंद्रियम, इंद्रियम का अर्थ मन, विमथितुम न सेको समर्था न बभुवो, समर्थ नहीं हो सके। भगवान उनके प्रेम के वश में होकर रहते थे, न कि उनके उनसे वे इंद्रिय सुख के लिए रह रहे थे। कहने का आशय यह, भगवान ने कभी भी उन स्त्रियों के साथ अंग संग नहीं किया, ये शास्त्र कहता है। और शास्त्र में यह लिखा गया खासकर श्रीमद् भागवतम में कि शिव जी का वीर्य स्खलित हो गया मोहिनी को देख करके, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का आज तक वीर्य स्खलन नहीं हुआ। भगवान के देह में वीर्य, हड्डी, चर्म आदि का भेद है ही नहीं, वो तो पूर्ण आत्मा है, उसमें वीर्य स्खलन का क्या प्रश्न है। इतनी सुंदर स्त्रियां भी उनके मन को आकृष्ट करने में समर्थ नहीं हो सके। ये सब भगवान की लीला थी या दया थी कि वे स्त्रियों को स्वीकार किए थे, न कि अपने सुख भोग के लिए या किसी अभाव से। गृहस्थ की लीला कर रहे थे, किसी बस में नहीं थे, अभाव में नहीं थे, लेकिन ऐसे तमयम मन्यते लोको ह्य संगम अति संगिनम, लेकिन ये लोग मानते हैं कि ये कृष्ण आसक्त हैं स्त्रियों में, ये असंगी हैं, अनासक्त हैं, लेकिन उनको लोग संगिनम असक्त मानते हैं, क्योंकि आत्मोपमेन मनुजम व्याप्रणवानम जतो बुधा, क्योंकि भगवान कुछ ऐसी लीला करते थे मनुष्यों जैसी, तो ये लोग
आत्म उपमेन, अपने जैसा ही उनको भी समझ लेते हैं, क्योंकि जतो अबुध है, जानकारी है नहीं, अबुध है, मूर्ख है, क्या करें, भगवान के तत्व का पता नहीं है, इसलिए अपने समान मनुष्य मान लेते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि एतद ईशन मिश्य जब प्रकृतो स्थिति तद गुण ही न जुजते सदात्मस्थर जथा बुद्धिस्त तदाश्रय। लेकिन वास्तव में भगवान की यह भगवत्ता है, ईश्वर की यह ईश्वत्व है कि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए भी उसे बंधते नहीं है, बल्कि गुणों को ही कंट्रोल में रखते हैं। तम में निरे अबला मुद्धा स्त्रैणम चानुव्रतम रह अप्रमाण विदो भरतो ईश्वर मत जप। ऐसे परम पुरुष को वे स्त्रियां समझती थी कि हमारे प्रियतम है, हमारे बस में है, हमें परिजात आदि लेकर के देते हैं, तो प्रेम के बस में भगवान को स्त्रैण समझती थी, अपने बस में समझती थी। लेकिन ये मूर्ख मनुष्य समझते हैं कि भगवान वास्तव में स्त्री के गुलाम है, ये है वो है, तो ऐसी बात नहीं है। जैसे क्षेत्रज्ञ परमात्मा को बुद्धियां अपने अपने अनुसार समझती हैं, वैसे जो व्यक्ति जैसा होता है भगवान को वैसा समझता है। लेकिन भगवान वास्तव में काम उपभोग भोग से बिल्कुल परे हैं, दिव्य हैं। तो इस प्रकार भगवान द्वारका में रहने लगे सुख के साथ। अब इसके बाद कहने का आशय है कि युद्ध नहीं किए, कुरुक्षेत्र का युद्ध ही लास्ट युद्ध था, इसके बाद भगवान किसी का वध नहीं करेंगे। पृथ्वी का भार दूर करके द्वारका में सुख से रहने लगे। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंधे श्रीकृष्ण द्वारका प्रवेशो नाम एकादशोध्याय। श्रीकृष्ण द्वारका में प्रवेश किए। यहां पर हम लोग कथा का विश्राम दे रहे हैं। भक्तों की ये इच्छा होती है कि भगवान सुख से रहे, लड़ाई झगड़ा में इधर उधर परेशान न हो, इसलिए उनको द्वारका लाया गया है। आप लोग बहुत प्रेम से और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की इस कथा का श्रवण किए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और हमने देखा है कि अमेरिका में सब जगह से अधिक चाव यहाँ रहता है। मैं भी कोशिश किया था कि ज्यादा दिन यहाँ कथा कहूँ, लेकिन अब श्री कृष्ण की जो इच्छा होती है वही होता है। ये भगवान सुजोग देंगे तो आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। आप लोगों का स्वभाव भगवान के प्रति
मल तू कम कवि गलित निगम कल मुकल परमानंद सुधार समय कर लीला रति रस रस निदान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की कलिमल मतनी ताप निवारिन जन्म मृत्यु भय भव भयारिन सेवत सतत सुकल सुखकारिन सुमहौ सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की विषय विलास विमोह विनाशिन विमल विराग विवेक विकासिन भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की परमहंस मुनि मन उल्लासिन रसिक हृदय रस रास विलासिन भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिन कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
प्रणादपी सुने चेन सर्वरूपी सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो महाराज ने कीर्तन भागवत का किया और महाराज वास्तव में उसके उच्च अधिकारी हैं और महाराज में वो जो चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षास्तक में जो गुण दे गए हैं वैसे संसार में और मिलना बहुत मुश्किल है। तो कई कारणों से मैं वास्तव में तो महाराज का पूरी तरह से मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरी वाणी में इतनी शक्ति है, मेरी वोकैबुलरी इतनी है कि मैं महाराज के जो भी आप भेंट देना चाहें और अनुमोदन जिन्होंने लिखा है वो ले आए, फिर भावना फिर आरती होगी। एक जस्ट महाराज जिन्हें जानते हैं रामलाल जी स्वामी, उनका नाम जो बरसना से, तो महाराज उनके बारे में वो दो शब्द उनके बारे में कह सकते हैं। और आपने मेरे घर पर भी उनकी कथा सुनी थी अभी यहाँ तक, तो वो सोमवार से रेंडाल्फ में मेरे घर से करीब 5 माइल दूर है, वहां पर कथा 7 रोज के लिए करने वाले हैं। जो 2 वर्ष पहले मेरे घर पर हुई थी वही लोग वर्सना से हैं, व्रज भूमि के हैं, वो लोग कथा करेंगे 6:30 बजे से 8:30 तक। और मैं आपको डायरेक्शन वगैरह जो जाना चाहें जो भी सज्जन वो जरूर जाएं और भागवत को पूरी भागवत सप्ताह जैसे पूरी भागवत का पाठ करेंगे, आपको सुनाएंगे कीर्तन के सभी के साथ में। और वो रेंडाल्फ में है, मैं आपको डायरेक्शन दूंगा 6:30 से 8:30 बजे तक। और सैटरडे अपनी रथ यात्रा के रोज वो सभी लोग आएंगे, उस समय 7:30 से 8:30 बजे से। और संडे उसकी सैटरडे उसकी पूर्ण होती है उसी वक्त सैटरडे 15 को, नहीं तो वो लोग रथ यात्रा में आएंगे, तो सवेर है वो पूर्णाहुति करके वो लोग रथ यात्रा में जितने भी हैं सब। हरे कृष्णा, तो आप सभी आकर के महाराज से भेंट कर सकते हैं, पहले आरती आरती के समय पर ही वो आकर के ओके। हरे कृष्णा महाराज। और ऐसा ही एक और खुशी की बात है कि महाराज ब्राह्मण इनिशिएशन मदर कृष्णा कृष्ण प्रिया देवी को आज दे रहे हैं, तो ये भी बड़ा और दीदी है ओके। तो उसके लिए उन्हें भी और महाराज को धन्यवाद, महाराज जिसे मालूम नहीं था इसके लिए क्षमा करेंगे। अच्छा अच्छा ओके। हरे कृष्ण महाराज, वो कथा जो कथा कर रहे हैं रामलाल जी स्वामी के बारे में दो शब्द आप दे सकते हैं, आप उसे ज्यादा परिचित हैं।
ब्रज में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा रहते हैं जिन्हें हम लोग रमेश बाबा के नाम से जानते हैं। बाबा बहुत प्रसिद्ध हैं और वृंदावन में बरसाने में प्रतिदिन कथा कहते हैं, कोई भी दिन हो प्रतिदिन कथा कहते हैं। और
45 वर्ष हो गया उनको ब्रज में रहते हुए, ब्रज से बाहर नहीं गए, कभी नहीं जाते। तो उनके ही परिकर हैं रामजी लाल जी शर्मा, वही जन्मे हुए हैं बरसाने के। तो वो बाबा के ही प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कथा कहने के लिए आते हैं, 2-3 साल से आ रहे हैं, अवश्य कथा सुननी चाहिए। वो तो ब्रज में जन्मे हुए, भगवान के प्रति बहुत भाव है उन लोगों का, ब्रज भाषा में भी बोलते हैं, गाते हैं बहुत अच्छा। उनकी जो परिक्रमा निकलती है तो मैं उसमें गया था, और बाबा बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, तीर्थों का उद्धार करना, और 40 दिन ब्रज यात्रा निकलते हैं जिसमें किसी से एक पैसा भी फीस नहीं लिया जाता। इतनी बड़ी यात्रा निकलना, उनके यात्रा में 1500 से लेकर के 3000 तक आदमी हो जाते हैं। बाबा इनको भेजे इस देश में, जाओ प्रचार करो, वे आते हैं। ये तीसरा साल है ना, ये तीसरा साल है, सुनना चाहिए।